मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स ने किया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संगरोध समाप्त। विक्टोरिया में 2000 से अधिक नए कोविड 19 मामलों का दूसरा दिन और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 2022-24 के लिए भारत का पुनः निर्वाचन। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री ने न्यू साउथ वेल्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आने की अनुमति देने के फैसले का बचाव किया है और इस बात से इनकार किया कि ये देश को पुनः खोलने की योजना के खिलाफ है।
Well, we're not opening up to everyone coming back to Australia at the moment. I want to be clear about that. We're going to take this forward in a staged and careful way, as we've done all of these things. It's for the Commonwealth Government, the Federal Government, to decide when the border opens and shuts at an international level, and we will do that. In the first instance, it will be for Australians, Australian residents and their families. We'll see how that goes, and then we'll move to the other priorities.
न्यू साउथ वेल्स 1 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी सीमा खोल रहा है। पूरी तरह से टीका लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय आगमन को अब अलग थलग करने की यानी आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनको डबल डोज नहीं लगा होगा उन्हें अभी भी एक पखवाड़े के लिए होटल संगरोध में जाना होगा और इसमें एक सप्ताह में 210 स्थानों की सीमा लगी होगी। प्रीमियर डोमिनिक पैरोटे का कहना है कि यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले और आगमन पर कोविड 19 के लिए नकारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता होगी।
A hotel quarantine, home quarantine is a thing of the past. We are opening Sydney and New South Wales to the world, and that date will come in on 1 November, and we'll continue to work closely with the Commonwealth Government to make sure protections are in place so that we keep people safe, but we rejoin the world.
न्यू साउथ वेल्स देश का पहला राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि ये विदेशी यात्रियों के लिए खुलेगा और संगरोध नियमों को आसान बनाएगा। दक्षिणी तस्मानिया होटल संगरोध का उल्लंघन करने वाले एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में बढ़ती चिंताओं पर 3 दिवसीय लॉकडाउन में जाएगा। ये व्यक्ति न्यू साउथ वेल्स से विक्टोरिया के रास्ते से वहां गया था और अधिकारियों का कहना है कि वो सहयोग नहीं कर रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा देने में विफल रहा है। प्रीमियर पीटर गुडविन का कहना है कि उस व्यक्ति के प्राथमिक संपर्क ने भी संगरोध का उल्लंघन किया था और उसे पकड़ लिया गया था।
We can't continue to wait another 2 days to find out more about what's been going on. Now, prior to reaching our vaccination goals and in readiness to open our borders before Christmas, we simply cannot afford for an outbreak to occur and to put the health and safety of Tasmanians, and especially the health and safety of vulnerable Tasmanians, at risk whilst we get our vaccination rates up. We're at a crucial stage of the vaccination rollout.
विक्टोरिया ने न्यू साउथ वेल्स के साथ अपनी सीमा प्रतिबंधों में ढील दी है। विक्टोरिया में 2179 कोविड 19 मामले और 6 और मौतों को दर्ज किया गया है। अगले सप्ताह से न्यू साउथ वेल्स के पूरी तरह से टीकाकरण करने वाले लोगों को बिना संगरोध के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। विक्टोरिया में अब 21,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और परीक्षण कमांडर जेरोइन वीमर का कहना है कि रात भर में रिपोर्ट किए गए संक्रमणों में से 55% नए घरों से आए हैं।
That's over 1,000 households again today, yesterday, getting the news that they've got a COVID positive case, and we know with a high attack rate of coronavirus, of Delta strain within households, we'll expect to see significantly more numbers coming out of those new households over the coming days and weeks. So these are, as ever, worrying numbers.
राज्य अगले सप्ताह लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने की अपनी योजना पर कायम है, जब यहां 16 से अधिक आयु के लोगों के लिए 70% दोहरी खुराक टीकाकरण पूरा हो जाएगा। 2 महीने से भी अधिक समय के बाद कैनबरा का कोविड 19 लॉकडाउन समाप्त हो गया है। आधी रात को प्रतिबंधों में औपचारिक रूप से ढील दी गई, जिसमें कैफे, रेस्टोरेंट और पब फिर से खुल गए और कैनबरा में अब लोगों के घरों में अधिकतम 5 आगंतुक आ सकते हैं। लेकिन एसीटी को फिर से खोलते हुए मुख्यमंत्री एंड्रू बा ने चेतावनी भी दी है कि यात्रा में बढ़ोतरी के साथ पूरे क्षेत्र में वायरस के मामले बढ़ेंगे। यूं न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों से यात्रा करने वालों के लिए कुछ यात्रा प्रतिबंध अभी भी लागू हैं।
So we are leaning into allowing more areas to not have a quarantine requirement, but we are going to assess both the caseload and vaccination status of particular areas within New South Wales before reaching a decision on which further areas will be able to have quarantine-free return to the ACT.
विक्टोरिया में भ्रष्टाचार की सुनवाई में शाखा स्टैकिंग और कॉमनवेल्थ फंडेड स्टाफ का दुरुपयोग करने की बात स्वीकार करने के बाद फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी बायरन के साथ हैं। लेबर सांसद ने खुलासे के मद्देनज़र संसदीय सुरक्षा समिति से त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन वो विपक्ष की पीठ पर बने हुए हैं। एंथनी एल्बनीज़ी का कहना है कि श्री बायरन के खिलाफ कोई और कार्रवाई करने से पहले विक्टोरियन भ्रष्टाचार आयोग की प्रतिक्रियाओं को अपना काम करना महत्वपूर्ण है।
I note that the head of IBAC, the commissioner, made comments about Anthony Byrne's evidence on when it was concluded, saying that he thanked him for the honesty of his evidence in coming forward. He's put his hand up and said this is a wrong practice and it needs to be weeded out, and indeed it does.
Crown Casino को अपना gambling license रखना चाहिए या नहीं, इसकी अंतिम रिपोर्ट विक्टोरियन सरकार को सौंप दी गई है। राज्य की गेमिंग मंत्री मलिसा हॉर्न का कहना है कि इसे सार्वजनिक रूप से जारी होने से पहले अगले पखवाड़े में निष्कर्षों पर विचार किया जाएगा। पूछताछ में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत और कैसीनो के इंटरनेशनल जंकेट पार्टनर्स के बीच संगठित अपराध समूहों के लिंक के बारे में सुना गया। भारत को कल गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 2022-24 के लिए पुनः चुना गया। भारत को 193 संसदीय सभा में 183 मत प्राप्त हुए। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए चुनाव किया। इनका कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। और भारत जम्मू कश्मीर के पुंज के मेंढर के नार खास जंगलों में हमलावरों के साथ मुठभेड़ में सेना के JCO और एक जवान की मृत्यु हो गई है। हमलावरों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ हमलावरों के उसी ग्रुप के साथ हो रही है जिनके हमले में 10 अक्टूबर देर रात को सेना के एक JCO समेत 5 जवान मारे गए थे। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के 55.63 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में केनियाई पुलिस ने 2 बार की विश्व चैंपियन की कांस्य पदक विजेता एग्नेस टिरोप के पति को गिरफ्तार किया है। एग्नेस टिरोप इस सप्ताह अपने घर पर मृत पाई गई थीं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस लंबी दूरी की धावक के पति को मोम्बासा में गिरफ्तार किया। 25 वर्षीय धावक ने टोक्यो ओलंपिक में 5000 मीटर में कीनिया का प्रतिनिधित्व किया और फाइनल में 4थे स्थान पर रहीं। पुलिस का कहना है कि उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया गया है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। एडिलेड में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। होबार्ट में भी बौछारें, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। और डार्विन में बौछारों की संभावना या तूफान की भी संभावना। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।